जय गौर प्रेमानंदे ओम विष्णुपाद परमहंस परिवर्तिकाचार्य सुशिष्यमद दिवान गिरि सभे चरणार भक्ति विदान स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिवर्तिकाचार्य सुशिष्यमद दिवान गिरि भक्ति सिद्धांत सदगोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णववृंद की नाम आचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की श्री राधा कृष्ण श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की ब्रजभूमि वृंदावन धाम की मायापुर नवद्वीप धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की गंगा मैया की जमुना मैया की तुलसी देवी की भक्ति देवी की समवेत भक्त वृंद की श्रील प्रभुपाद की ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। गौर प्रेमानंदे सब कठे भक्तों की जय। हरे कृष्णा सब कठे भक्तों की जय। हरे कृष्णा सब कठे भक्तों की जय। हरे कृष्णा श्री गुरु गौरंगा की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। नमा ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारण गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सबका कृष्ण बलराम मंदिर में प्रातः भागवत के सत्संग में हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण के आठवें स्कंद में आठवें अध्याय के अंतर्गत समुद्र मंथन में आज नवें श्लोक के ऊपर सत्संग होगा। आठवां स्कंद श्रीमद् भागवत का मनवंतरों का वर्णन करता है। मनवंतर भागवत के 10 विषयों में से एक विषय है मनवंतर। अनवंतर का अर्थ है कि जब भगवान सृष्टि करते हैं तो उसके संचालन के लिए ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनुओं का शासन चलता है। और जब कोई मनु शासन चलाते हैं तो उस समय एक भगवान का अवतार होता है, उसको मन्वंतर अवतार कहते हैं। वो भगवान का मन्वंतर अवतार किसी एक योग्य व्यक्ति को इंद्र चुनता है उस मन्वंतर के लिए, और 7 ऋषि चुनता है धर्म के मार्गदर्शन के लिए। और जो मनु होता है वो सद्धर्म की स्थापना करता है। तो 8वें स्कंद में 14 मनुओं का वर्णन है। इस वक्त हम 7वें मनु के शासन में जी रहे हैं, और ये 7वां मनु है विवस्वत मनु, जिसको भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान जो दिया है वो 7वां मनु है। परंतु इस 8वें स्कंद में जो मन्वंतर के अंतर्गत सद्धर्म जो है, 3 विशेष सद्धर्मों का वर्णन है। पहला, जब संकट हो, आपत्ति हो, विपत्ति हो तो भगवान का शरण लेना चाहिए। संकट में भगवान का शरण लेना चाहिए, ये है पहला सद्धर्म। और इसके वर्णन में गजेंद्र मोक्ष की कथा है। दूसरा सद्धर्म है, जब भगवान उदारता से सब आपका सहयोग कर रहे हैं तो जो कुछ भी भगवान से प्राप्त हो उस सब को उदारता से वितरण कर देना चाहिए, दान कर देना चाहिए। और इस प्रसंग में समुद्र मंथन का वर्णन है, जिसमें से 14 रत्न निकले और सारे ही रत्न वितरण कर दिए गए। और इस एक लीला में भगवान के 4-4 अवतारों का, कम से कम 4-4 अवतारों का वर्णन है। और फिर 9 अध्यायों में जब जीवन में कोई वचन दे दिया जाए तो उसको पालन करने में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। भगवान छल करे या गुरु मना करे, फिर भी वचन के ऊपर दृढ़ रहना चाहिए, बलि महाराज का चरित्र है। और 1 अध्याय में मत्स्य अवतार का वर्णन है, जो सत्यव्रत को वचन पालन करने का और धर्म की रक्षा का शिक्षा दिया है। ऐसे ये 8वें स्कंद का स्वरूप है। आज जो हम श्लोक पढ़ रहे हैं उसमें लक्ष्मी प्रकट हुई है समुद्र मंथन से। वैसे लक्ष्मी समुद्र से नहीं प्रकट हुई है, सं लक्ष्मी नित्य है। जैसे कौत्सक मणि, भगवान की कौत्सक मणि है, कौत्सक मणि वो तो सदा ही भगवान के साथ है, लेकिन भगवान ने समुद्र में गिरा दी, वापस समुद्र ने उनको दे दिया और वो भगवान ने पा ली। ऐसे लक्ष्मी जी कहने लगी भगवान नारायण से कि सब लोग विवाह की गांठ मनाते हैं, हमारा विवाह कब हुआ तो संसार को पता ही नहीं है, तो कोई स्वयंवर तो होना चाहिए। तो भगवान ने, कोई बात नहीं, आप समुद्र की पुत्री के रूप में प्रकट हो जाओ, स्वयंवर होगा तो सबको पता लग जाएगा हमारी विवाह की वर्षगांठ कौन सी है। तो ये लक्ष्मी के प्रकटे का जो रहस्य है। अब लक्ष्मी जब प्रकट हुई तो उस समय देवता भी थे, असुर भी थे, भगवान भी वहां विराजमान थे। तो उन लोगों का लक्ष्मी के प्रति कैसा भाव उत्पन्न हुआ उसका वर्णन आज के श्लोक में है। तो आइए श्लोक का अब आवृत्ति करते हैं। तस्याम चक्रुस्प्रां सर्वे ससुरसुर मानवाः रूपौदार्य वयो वरणा महिमा अक्षिप्त चेतसा तस्याम चक्रस्प्रहं सर्वे ससुरासुर मानवाः रूपौदार्य वयो वरणा महिमा अक्षिप्त चेतसः तस्यां चक्रस्प्रहं सर्वे ससुरासुर मानवाः रूपौदार्य वयो वरणा महिमाक्षिप्त चेतसः तस्याहं चक्रो स्थान सर्वे ससुरासुर मानवाः उपौदार्य वयो वर्णा महिमाक्षिप्त चेतसा तस्यां चक्रस्प्रहं सर्वे ससुरासुर मानवाः उपौदार्य वयो वर्णा माक्षिप्तचेतसा सर्वे तस्यां स्पृहासुरमानवाः रूपौदार्य वयो वर्णा माक्षिप्तचेतसा माताजी समान सर्वे ससुरासुर मानवाः रूपौदार्य वयो वरणा माक्षित चेतसा तस्यां चक्रस्प्रहं सर्वे ससुर मानवाः रूपौदार्यः वयो वरणा महिमाक्षिप्तचेतसः तस्यां चक्रुस्पृहाः सर्वे ससुरासुरमानवाः रूपौदार्यः वयो वरणा तस्याम का अर्थ है जो इससे पहले श्लोक में लक्ष्मी के प्रकट्य का वर्णन किया गया है वो लक्ष्मी तस्याम का मतलब वो लक्ष्मी चक्रु स्प्रहा सर्वे सब ने स्प्रहा का मतलब इच्छा करना चाहना और चक्रु का मतलब है करना तो लक्ष्मी के प्रति सबने प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की सबके हृदय में लक्ष्मी को प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न हुई इसका अर्थ ये हुआ तो किस किस को स स का मतलब साथ में सुर देवता असुर असुर और मानव तो मानव सहित सुर और असुर उस लक्ष्मी को प्राप्त करने की इच्छा कर रहे हैं ये दो लाइनों का अर्थ हुआ भाई क्यों कर रहे हैं इच्छा ऐसी कौन सी बात है लक्ष्मी में तो रूप बहुत सुंदर है रूप का मतलब उसकी सुंदरता औदार्य का मतलब उसका औदार चित्त बड़ा उदार है वय का मतलब उसकी आयु और वर्ण का मतलब उसका रंग लक्ष्मी की सुंदरता, औदार्य, आयु और उसकी जो रंग की कांति थी वो इतनी लुभाने वाली थी कि सब के सब सुर असुर और मानव उसको प्राप्त करने की इच्छा करने लगे। क्यों करने लगे इच्छा उसको प्राप्त करने की? पूजा करना चाहते थे? नहीं। तब लिखा है महिमा क्षिप्त चेतसः, मां अक्षिप्त शब्द है, मां अक्षिप्त, महिमा महिमा मां अक्षिप्त। मां का मतलब नहीं, महिमा का मतलब उसकी महानता को, अक्षिप्त का मतलब वो जानते ही नहीं थे उसकी महिमा को, उसकी महिमा को तो दूर फेंक दिया। किससे? मन से। तो उसकी महिमा क्या है? उसकी महिमा 25वें श्लोक में आएगी कि वो जगत की माता है। भगवान के वक्ष स्थल के ऊपर निवास करती है, ये उसकी महिमा है। वो तीनों लोकों की माता है, त्रिलोक जननी लिखा है वहां। ये महिमा नहीं जानते थे, इस महिमा को तो छोड़ दिया। जो वास्तव में लक्ष्मी की महिमा है वो तो छोड़ दी। उनके रूप औदार्य और वय और वर्ण में आसक्त हो गए। अब इस श्लोक के शब्दों का अर्थ आपको स्पष्ट समझ में आ गया। अब देखें सब, हर एक शब्द जो उसमें पड़ा है आप उसका अर्थ समझ सकते हैं। प्रभुपाद जी के तात्पर्य देखते पढ़ते हैं, वह तस्याम उसके लिए चक्रो की स्प्रहा इच्छा सर्वे हर कोई ससुर असुर मानवाहा देवता असुर तथा मनुष्य समेत रूप औदार्य अपूर्व सौंदर्य तथा शारीरिक स्वरूप के द्वारा वय तारुण्य वर्ण रंग महिमा यश अक्षिप्तः क्षुब्धः चेतसः मन वाले। श्री प्रभुपाद का अनुवाद। उनके अपने अपूर्व अपूर्व सौंदर्य, उनके अपने मतलब लक्ष्मी के, लक्ष्मी के अपने अपूर्व सौंदर्य, शारीरिक सौष्ठव तारुण्य रंग तथा यश के कारण हर व्यक्ति यहां तक के देवता असुर तथा मनुष्य उनको पाने की कामना करने लगे। वे इसलिए आकृष्ट थे क्योंकि रमा देवी समस्त ऐश्वर्य की उद्गम है। इसका मतलब सबको ऐश्वर्य चाहिए था, सबको लक्ष्मी से ऐश्वर्य चाहिए था। इसलिए श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य ऐश्वर्य के शुरुआत ऐश्वर्य के ऊपर है। इस संसार में ऐसा ऐसा कौन होगा जिसे धन सौंदर्य तथा इन ऐश्वर्यों से मिलने वाले सामाजिक सम्मान की चाहना न हो। इस संसार में ऐसा कौन होगा जिसको धन नहीं चाहिए, सम्मान नहीं चाहिए? और तीसरी बात लिखी है सौंदर्य नहीं चाहिए। कौन ऐसा है जिसको ये सब नहीं चाहिए? सभी इसको चाहते हैं, सबको इसके चाहने की कामना है। लोग सामान्यतः भौतिक भोग, भौतिक ऐश्वर्य तथा उच्च कुलीन परिवार के सदस्यों की संगति चाहते हैं। भौतिक ऐश्वर्य और भौतिक भोग और उच्च कुलीन लोगों की संगति चाहते हैं। इतना लिखने के बाद प्रभुपाद ने एक भगवद गीता का श्लोक उद्धृत किया है थोड़ा सा, और वो श्लोक है भोगेश्वर प्रसक्तानाम तया पहर्त चेतसाम व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधाओ न विद्यते। अब वो प्रभुपाद ने पहले लिखा सब लोग ये चाहते हैं, कौन है नहीं चाहता, फिर कहते हैं ये चाहने वाले हैं ये कभी भी भगवान को नहीं पा सकते। भोगेश्वर प्रसक्ता नाम, जो भोग और ऐश्वर्य में प्रकृष्टेण रूपेण आसक्त है, पूरी रूप से आसक्त है, भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तया पहर्त चेत साम, उसका चित्त हर लिया गया है। और यहां लिखा है चित्त क्षिप्त, उनका चित्त हर लिया गया है किसकी ओर, ऐश्वर्य की ओर, किसकी ओर, भोग की ओर। समाधाओ न विद्यते, उसकी बुद्धि कभी एकाग्र नहीं हो सकती। तो ये जो पहला प्रश्न के कौन नहीं चाहता, ये सब सब चाहते हैं, इसका मतलब सब भगवान को पा नहीं सकते। सब जो ये चाहते हैं वो भगवान को नहीं पा सकते। तब हमारे को कौन सा श्लोक और याद आना चाहिए, न धनम न जन्म, हाँ भगवान को पाने वाले को न धनम न जन्म न सौंदर्यम कवितम व जगदीश कामये। ये अच्छा है चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा का, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे ऐश्वर्य नहीं चाहिए, भोग नहीं चाहिए, मुझे तो केवल भगवान आपके भक्तों का संग चाहिए, भक्तों की सेवा चाहिए। नहीं, ये शब्दों के ऊपर एक श्लोक कुंती महारानी की प्रार्थना का है, क्या जन्म ऐश्वर्य श्री सुख जिसके पास ये चार चीजें हैं वो कभी भाव से भगवान के नाम का उच्चारण कर ही नहीं सकता। अब आप गाते गाते आनंद में नृत्य करते हैं वो नहीं करेगा, आप मंदिर में जाके प्रणाम करेंगे वो नहीं करेगा। आप देखते हैं यहां वीआईपी आते हैं, जब उनको हम दर्शन कराने के लिए आप लोग ले जाते हैं, कभी प्रणाम करते हैं, अब देखा है आपने, हाँ प्रोटोकॉल में उसके आगे चार पुलिस वाले होते हैं, टोपी वाला होता है, हमारे भक्त भी उसके आगे ऐसे आगे ले जाते हैं, कभी किसी ने प्रणाम किया है बताइए, नहीं किया ना, क्यों, हम इतने बड़े हैं, भगवान से बड़े तो नहीं हो ना, लेकिन ये आपको एक नशा दे देता है। ये बड़े शाहूकार धनी लोग भी प्रणाम नहीं करते, सुंदर लोग तो इसलिए प्रणाम नहीं करते कहीं मिट्टी न लग जाए हमारे कपड़ों पे। अरे ऐसा भी एक महात्मा देखा है मूर्ख, जो बड़ा सा नीचे पहले कालीन बिछाता है फिर प्रणाम करता है। अरे भगवान के सामने तो पगड़ी उतार के जाता है, छाता उतार के जाता है, जूता उतार के जाता है, वहां ऐश्वर्य दिखाने की मूर्खता करना, इसका मतलब उसका चित्त भोग और ऐश्वर्य में आसक्त है। अरे ब्रज की मिट्टी में लौटना चाहिए, यहां मिल रही लग जाए ब्रज की रज तो सौभाग्य है, वहां ये लोग कभी ऐसे नहीं करेंगे, न सुंदर करेगा, न धनी करेगा, न उच्च कुल वाला करेगा। इनके लिए हृदय से भगवान का नाम उच्चारण करना, ये कुंती महारानी ने जो कहा है, इनको फिर नारद जी ने क्या कहा है दसम स्कंद में, चार नशे हैं, मद है, मद चार, कौन सा मद है, रूप का मद, सुंदर रूप का मद, धन का मद, उच्च कुल में जन्म का मद, उच्च विद्या का मद। और इन चारों में सबसे ज्यादा दुखदाई मद कौन सा है, धन मद अंधा, धन के मद में अंधा, जो धन के मद में अंधा है, और वो थे नल कुबेर और मणिग्रीव। कुबेर के बेटे थे, शंकर जी के अनुचर थे, और जहां गंगा जैसे पवित्र स्थान में जहां लोग पवित्र होने जाते हैं वहां मदरा पी के नारियों के साथ नंगे नाच रहे थे,
ये है धन के मद के अंध का स्वरूप। और इस धन के मद के अंध की चिकित्सा नारद जी ने क्या बताया, दरिद्र एव अंजनम। जब वो गरीब होगा ना तब उसको पता लगेगा, कांटा कांटे से निकाला जाता है, कांटा लगता है तो कांटे से निकाला जाता है। तो धन के मद के अंध को धन छीन के दरिद्र बनता है तब उसको पता लगता है। सो ये जो लाइनें लिखी हैं, लक्ष्मी को चाहने वालों की ये सारे धन के मद में अंधे हैं, भोग और ऐश्वर्य के मद में अंधे हैं। भौतिक भोग का अर्थ है धन सौंदर्य तथा उनसे मिलने वाला यश, जो धन की देवी की कृपा से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। इसका अर्थ देवता मनुष्य असुर या जो भी वहां थे वो लक्ष्मी से क्या चाह रहे थे, धन चाह रहे थे। और धन से क्या मिलेगा, सब सुख सुविधाएं मिल जाएंगी, ये लक्ष्मी से उनकी चाहना थी। लक्ष्मी को नहीं चाह रहे थे, लक्ष्मी से ऐश्वर्य चाह रहे थे, काय के लिए, भोग के लिए। और प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, किंतु धन की देवी कभी अकेली नहीं रहती, लक्ष्मी कभी अकेली नहीं रहती। जैसा कि पिछले श्लोक में भगवत परा शब्द से सूचित होता है, वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के की संपत्ति है और उन्हीं के द्वारा भोग्य है। अब प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि लक्ष्मी भगवान के भोग्य है, हम उसको भोग करने की मूर्खता करेंगे तो नष्ट हो जाएंगे। तब आपको कौन सा उदाहरण दिमाग में आता है, हाँ जी, काम लोभ मोह काम, ये भगवत गीता का श्लोक कह रहे हो क्या, नहीं, प्रसक्ता नाम प्रसक्ताम काम भोगेशु पतन्ते अधा, ये तो श्लोक हो गया, मैं उदाहरण पूछ रहा था आपसे, ये भी ठीक है। रावण सीता को भोगना चाह रहा था राम से अलग करके, सोने की लंका नष्ट हो गई, उसी तरह सा उदाहरण पड़ा है। सीता को भोगना चाह रहा था, सीता राम के लिए है, उसको रावण भोगने की मूर्खता कर रहा था, सोने की लंका के साथ वंश का ही विनाश हो गया। तब मानवता में दो मानसिकता है, एक रावण वाली मानसिकता है, भगवान को छोड़ के भगवान की प्रियसी लक्ष्मी को भोगना चाहता है, भगवान को नहीं भगवान की लक्ष्मी को भोगना चाहता है। और दूसरा है भगवान की लक्ष्मी को भगवान की सेवा में लगाना चाहता है। पहले का उदाहरण है रावण, जो भगवान से सीता को अलग करके भोगना चाहता है। दूसरे का उदाहरण है हनुमान, जो सीता को राम से मिलाने का प्रबंध करता है। ये दो प्रकार की मानसिकता है संसार में, आप कौन से तरफ जाना चाहते हैं ये आप विचार करके बताओ, हनुमान की तरफ जाएंगे कि रावण की तरफ, कहते हो लेकिन अंदर से क्या विचार है, हाँ? ये मैं कई बार कह चुका हूं आपको, फिर कथा में आता है तो कहना पड़ता है। अब मंदिर के बाहर खड़े होके लोग मंदिर में आते हैं, उनसे पूछो क्यों आए हो, 100 में से 99 क्या कहेंगे आपका विचार में, क्या कहेंगे? सुख शांति मिले। पूछो सुख शांति कैसे मिलेगी, क्या कहेंगे? हाँ, लक्ष्मी घर आए। क्या कौन आरती में क्या गाते हैं? हाँ, सुख शांति, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट तो मिटे न मिटे, सुख संपत्ति घर आवे। संपत्ति घर आए का मतलब लक्ष्मी हमारे घर में आए, यही मांगते हैं ना। अब ये हमारा प्रश्न तो बहुत पुराना है, लक्ष्मी क्या लगती है नारायण के? हाँ, पत्नी है ना। और आप जाके भगवान के साथ खड़ी हुई नारायण के साथ लक्ष्मी को प्रार्थना करो भगवान को कि लक्ष्मी हमको दे दो, इसका मतलब किसी पति को कहोगे तुम्हारी पत्नी हमको दे दो, तो क्या आपकी प्रार्थना से खुश हो जाएगा? दे देगा, डंडा मारेगा? हाँ नहीं। तो इसका मतलब जो मूर्ख ऐसे मांगते हैं वो अपने सर्वनाश की शुरुआत कर रहे हैं। तो क्या करना चाहिए मंदिर में जाके? लक्ष्मी को माता करके उधर पुकारो ना कि आप हमारी माता हो, हम आपके बालक हो गए। अब बालक का पोषण तो माता करेगी, लेकिन मालिक बनोगे तो मूर्ख कहलाओगे, बालक बनोगे तो सुखी रहोगे, क्योंकि वो तो जगत की माता है। अब वो माता का बालक बनना चाहिए कि पति बनना चाहिए? ये है सारी धार्मिक लोगों की ना समझी, समझते नहीं है क्या मांग रहे हैं, ये उनकी मूर्खता है। तात्पर्य को आगे पढ़ के पूरा करते हैं। तो प्रभुपाद जी सलाह दे रहे हैं, यदि कोई धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा का इच्छुक है तो उसे चाहिए कि वो उन्हें नारायण के साथ रखे, क्योंकि वे स्वभाव से भक्त परा है, स्वभाव से भक्त परा है। जो भक्त सदैव नारायण की सेवा में लगे रहते हैं नारायण प्रायण, उन्हें निश्चित ही धन की देवी की कृपा प्राप्त हो सकती है। किंतु जो भौतिकवादी उन्हें निजी भोग के लिए प्राप्त करना चाहते हैं वे निराश होते हैं। अब प्रभुपाद ने सलाह क्या दे दी, आपको धन चाहिए तो लक्ष्मी को नारायण के साथ मांग लो। कौन नारायण के साथ मांगेगा? जो नारायण परायण है, जो नारायण का शरणागत है, वो लक्ष्मी नारायण दोनों को चाहेगा, तब उसको भगवान सब कुछ दे देगा, लक्ष्मी कृपा करेगी उसके ऊपर। परंतु अकेली लक्ष्मी को भोगने का प्रयास करेगा तो सर्वनाश हो जाएगा, प्रभुपाद ने लिखा। ये भी आश्चर्य है, अभी हम इसको समझ नहीं पाए आज तक। दिवाली के समय केवल अकेली लक्ष्मी की पूजा होती है, जानते हुए कि दिवाली राम जी सीता को लेकर आए थे, तो लक्ष्मी की नारायण के साथ पूजा न होकर केवल लक्ष्मी की पूजा होती। क्यों होती है, कैसे शुरू हुई हमको मालूम नहीं, लेकिन ये क्यों हो रही है, दोनों के साथ होनी चाहिए ना। जब है राम जी का अयोध्या में आना तो सीताराम की पूजा होनी चाहिए, लक्ष्मी नारायण की पूजा होनी चाहिए, राधा कृष्ण की पूजा होनी चाहिए, तो अकेले लक्ष्मी की पूजा क्यों हो रही है हमको मालूम नहीं, समझ में नहीं आता है। जानते नहीं। इतना जरूर समझना चाहिए, ऐसे शास्त्र कहता है, लक्ष्मी चंचल है, कभी सदा रहती नहीं एक जगह। वो एक जगह रहने के, उसकी एक जगह रहने का स्वभाव ही नहीं, वो कभी है यहां कभी वहां है, आती जाती रहती है। कौन सी लक्ष्मी? जब अकेली आती है। जब नारायण के साथ आती है तो उनका तो संग कभी छोड़ के जा ही नहीं सकती। लक्ष्मी की प्रार्थना है कि भगवान के चरणों को छोड़ के कहीं नहीं जाती। तो भगवान के साथ लक्ष्मी को चाहेंगे तो लक्ष्मी आएगी गरुड़ के ऊपर चढ़ के। लक्ष्मी नारायण जब साथ आते हैं तो तब लक्ष्मी का वाहन गरुड़ होता है, और गरुड़ के पंखों से वेद की ध्वनि निकलती है। इसका मतलब धर्म के मार्ग से धन आपके पास आएगा, वो धन आपका, आपके द्वारा धर्म के काम कराएगा। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण हमको बे इंतहा लक्ष्मी दे रहे हैं। क्योंकि हम एक पैसा भी अपने भोग के लिए उपयोग में नहीं लाते, सभी भगवान की सेवा में लगाते हैं, इसलिए भगवान हमको अधिक से अधिक दे रहा है, कभी किसी चीज की कमी नहीं आई। इसी वृंदावन मंदिर के भागवत के प्रवचन में प्रभुपाद जी कह रहे थे, मैं तो 40 रुपया लेके अमेरिका प्रचार के लिए गया था, आज कृष्ण की कृपा से अरबों की संपत्ति पूरे विश्व में 10 साल में हो गई है। ऐसा कोई व्यवसाय करने वाला है जो 40 रुपये से 40 अरबों का संपत्ति बना सके 10 साल में? नहीं। और तब प्रभुपाद ने कहा कि हमारे मंदिर लोगों से धन मांगने के लिए नहीं है, आने वालों को श्री कृष्ण की महिमा समझाने के लिए है। वो अगर जीवन कृष्ण को अर्पण कर देंगे तो सब कुछ आपके, सब कुछ अपने आप को अर्पण कर देंगे, उनको आप कृष्ण दो। और प्रभुपाद ने कहा लक्ष्मी प्रचार का बाय प्रोडक्ट है, आप प्रचार करोगे तो लक्ष्मी बिन बुलाए अपने आप लोग चरणों में डाल जाएंगे। इसी यहां वृंदावन में प्रभुपाद का एक लेक्चर है, कभी ढूंढ के देख लेना, वो शब्द क्या कहे हैं, आने वाले की जेब को मत देखो, जेब के पीछे दिल को देखो। मंदिर में आया है तो कोई भाव तो है ना, उसके भाव को जगाओ, उसको भाव को भगवान की सेवा में लगाओ, तो वो सब कुछ समर्पण कर देगा। और फिर कहा मैंने देखो कैसे किया है। सो लक्ष्मी जब नारायण के साथ आती है तो गरुड़ के ऊपर आती है, और वो लक्ष्मी धर्म के कार्य कराती है, वो धर्म का धन है। जब लक्ष्मी अकेली आती है तब उसका वाहन उल्लू है, तब उल्लू के ऊपर चढ़ के आती है, और जब वो उल्लू के ऊपर चढ़ के आती है तो वो धन आदमी को अंधा बना देता है। जैसे उल्लू अंधा है, दिन को रात कहता है, ऐसे लोग रात को ही जागेंगे। उल्लू के ऊपर लक्ष्मी वाले लोग रात को जागते हैं, और रात को क्या करते हैं, भोग, बस और क्या, रात को कुछ भी नहीं है, भोग है सिर्फ। तो इसका मतलब वो लोग भोग ऐश्वर्य में लिप्त हो जाएंगे। और बहुत कठोर भाषा में कहा जाए
तो उल्लू के ऊपर आने वाली अकेली लक्ष्मी उनको उल्लू का पट्ठा बना देगी। वो ऐसे बन जाएंगे, न माँ का ध्यान, न बाप का ध्यान, न धर्म का ध्यान, न ब्राह्मण का ध्यान, न मंदिर का ध्यान, न गुरु को ध्यान। धन ही उनके जीवन का सब कुछ है, सर्वस्व है, और धन के मद के अंध में सब पाप करेंगे, और नशे से लेके, विभिचार से लेके, दुराचार से लेके सब दोष उनके जीवन में आपको दृष्टिगोचर होंगे। है तो दोनों जगह लक्ष्मी, एक जगह धर्म का काम कर रहा है, करा रही है, एक जगह अधर्म का कार्य करा रही है। भाई इतने सारे 5,000 मंदिर है वृंदावन में, ये भी तो धन से ही बने हैं ना, किसी ने इसमें भी लगाया है ना, तो ये धन जो है सार्थक हुआ कि नहीं हुआ, ये भी तो धन है। तो धन धर्म के लिए होना चाहिए, भोग के लिए नहीं। धर्म धन के लिए नहीं होना चाहिए, मोक्ष के लिए धर्म का पालन करना चाहिए। धर्म अपवर्गस्य न अर्थस्य, अर्थ के लिए धर्म नहीं होना चाहिए, अर्थ के लिए धन नहीं होना चाहिए, धर्म अपवर्ग के लिए होना चाहिए। तो अर्थ काय के लिए होना चाहिए, भोग के लिए, अर्थ काम के लिए नहीं। अर्थ धर्मस्य, अर्थ है धर्म के लिए होना चाहिए। आपके पास धन है तो धर्म के काम में लगाओ। तो प्रभुपाद जी आगे लिख रहे हैं, उनकी ये नीति ठीक नहीं है। किसकी? अकेली लक्ष्मी को चाहने वाले भौतिकवादों की ये नीति ठीक नहीं है। उदाहरणार्थ प्रख्यात असुर रावण रामचंद्र को लक्ष्मी अर्थात सीता जी के विहीन करके विजयी बनना चाहता था, किंतु परिणाम उल्टा ही निकला। भगवान श्री रामचंद्र ने निस्संदेह सीता को बलपूर्वक ले लिया और रावण अपने समुच्चे भौतिक साम्राज्य सहित विनिष्ट हो गया। धन की देवी सबके लिए, जिसमें मनुष्य भी सम्मिलित है, अभिष्ट है। धन की देवी सबको चाहिए, सबको धन की देवी चाहिए, किंतु मनुष्य को यह समझना चाहिए कि लक्ष्मी केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ही संपत्ति है। ईशा वाशा इदम सर्वम, जो कुछ दिख रहा है सब भगवान का है। कोई भी व्यक्ति लक्ष्मी की, लक्ष्मी का तब तक कृपा पात्र नहीं बन पाता जब तक वो अपनी तथा व्यक्ति लक्ष्मी का तब तक कृपा पात्र बन नहीं पाता जब तक वो उनकी तथा परम भोक्ता श्री भगवान दोनों की स्तुति नहीं करता। तो लक्ष्मी की कृपा तब तक कब मिलेगी? जब भगवान के साथ उसकी स्तुति करेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास ठाकुर से पूछा, आप गृहस्थी हो, कोई कारोबार नहीं करते हो, धंधा नहीं कर रहे हो, कारोबार आपके परिवार का पालन कैसे होगा? श्रीवास ठाकुर ने कहा, भगवान देगा। बोला, नहीं दिया तो? बोला, उपवास कर लूंगा। दूसरे दिन कहा कि दूसरे दिन नहीं दिया तो? बोला, गंगा जल पी लूंगा। तीसरे दिन नहीं दिया तो? फिर गंगा में कूद जाऊंगा। भाई मैं जब भगवान के ही शरण में हूं तो क्यों नहीं भगवान देगा? उपवास कर लूंगा, जल पी लूंगा, या जमुना में अपने आप को अर्पण कर दूंगा। तब चैतन्य महाप्रभु ने का श्रीवास। लक्ष्मी कभी दरिद्र हो तो असंभव है कि लक्ष्मी भिखारी बन जाए, नहीं हो सकता। हो भी जाए असंभव है, हो जाए तो हो जाए, लेकिन तेरे घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। तेरे घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का पार्षद था। इसका मतलब उसने अपना सर्वस्व चैतन्य महाप्रभु को अर्पण कर दिया था, तो लक्ष्मी उसको छोड़ के कहां जाएगी। जगन्नाथ मिश्रा कहते हैं, जब से चैतन्य महाप्रभु हमारे घर में निमाई प्रकट हुए हैं, तब से हर एक व्यक्ति कोई धन ला रहा है, कोई वस्त्र ला रहा है, कोई आभूषण ला रहा है, लगता है हमारे घर में लक्ष्मी का निवास हो गया। और नंद उत्सव के वर्णन में आता है, रमा कीड़ा स्थली, कृष्ण के प्रकट होते ही सारा वृंदावन लक्ष्मी की रमा की कीड़ा स्थली हो गई। इसका मतलब लक्ष्मी वैकुंठ छोड़ के यहां वृंदावन में सबको समृद्धिशाली करने लगी। इसका सीधा अर्थ है कि हम अचेतना महाप्रभु के अनुयायी बन के राधा कृष्ण के शरण में जाएंगे तो कभी किसी को किसी भी स्थिति में धन का अभाव असंभव है, नहीं होगा, सदा ही भंडार भरे रहेंगे, कभी कमी नहीं होगी। इसलिए निश्चित रूप से चैतन्य महाप्रभु के शरणागत होकर और राधा कृष्ण की उपासना का मार्ग, जैसे शिला प्रभुपाद ने हमको बताया है, दृढ़ निश्चय के साथ पालन करने का संकल्प कर ले तो जब तक जिएंगे आनंद से जिएंगे, और जब तक यहां से जाएंगे तो परमानंद की प्राप्ति करेंगे। धन के लिए चिंता मत करो, भगवान की चिंता करो। लक्ष्मी तो अपने आप चली आती है जहां नारायण है, जहां कृष्ण है। और फिर ये लाइन कह के मेरे ख्याल में पीछे प्रसाद आ गया, टाइम भी हो गया। श्री प्रभुपाद ने कुंभ मेला 77 का, 71 के बाद 77 का, कुंभ मेले में स्नान के दिन, क्योंकि रास्ते बंद होते हैं, सामग्री लाना मुश्किल होती है और प्रसाद वितरण करना कुंभ मेले में सबका ही उद्देश्य है, लेकिन इस्कान का मुख्य उद्देश्य होता है प्रसाद वितरण करना। उस दिन सामग्री नहीं थी, क्योंकि नए भक्तों को पता नहीं था कि रास्ते बंद हो जाएंगे, तो प्रभुपाद ने एक घंटा भागवत दास को, जो इंचार्ज था कुकिंग के लिए, कहा कि प्रसाद क्यों नहीं वितरण हुआ, तुमने दो दिन पहले क्यों नहीं सामग्री लाए। कुंभ मेले में इतने यात्री आते हैं बेचारे, उनके लिए प्रसाद का प्रबंध तो होना चाहिए। एक घंटे के बाद प्रभुपाद जी उसी दिन कलकत्ता के लिए प्रयाग से रवाना हुए। कलकत्ता में पहुंचा तो प्रभुपाद जी के मन में वही प्रसाद न वितरण करने वाला इतना खेद था, इतना दुख था। उन्होंने तमाल कृष्ण गोस्वामी को, जो सेक्रेटरी थे, बुला के कहा, एक चिट्ठी लिखो सब मंदिरों को, इस्कान के सब मंदिरों को चिट्ठी लिखो, हमारे मंदिर में जो भी यात्री आता है भगवान के दर्शन के लिए, वो हमारा अतिथि है, और हमारी रसोई में हर समय 25-50 व्यक्तियों के लिए भोजन, और भोजन के लिए फिर लिखाया कि चावल, दाल, सब्जी, पूरी, हलवा, पकोड़ा, ऐसे नाम लिखाए, और उन भाग्यशाली आने वाले अतिथियों को आदर पूर्वक प्रसाद खिलाओ, और जब प्रसाद थोड़ा कम दिखने लगे तो दूसरा प्रसाद का बैच बना लो, और आने वालों को प्रसाद वितरण करने में कमी मत करना। और फिर लिखा, रसोई लिखवाया, रसोई घर की स्वामिनी राधा रानी है और लाखों लक्ष्मियां उसकी सेवा करती हैं। आपको कभी किसी चीज का अभाव या कमी नहीं होगी, कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। आप विश्वास करो कि लक्ष्मियां, लाखों लक्ष्मियां राधा रानी की सेवा, सहस्र लक्ष्मी राधा रानी की सेवा में है। ये प्रभुपाद के आदेश अभी तक ऐसे कैसे लिखे पड़े हैं। इसका अर्थ प्रभुपाद ने कहा था, एक बार बॉम्बे में कहा कि आप जो सब आओ ना, सब जितने ये कीर्तन कर रहे हो, भजन करने आते हो ना, मंगल मंगलवार जो एक दिन का, आप सब आके यहाँ रह जाओ, आपका रहना खाना सब खर्चा हम उठा लेंगे, आप यहीं रह जाओ। ये जो भाव प्रभुपाद जी का है कि हम केवल भगवान की सेवा में लग जाएंगे तो लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होगी। इसलिए भक्ति में दृढ़ता से लगे रहो, लक्ष्मी की चिंता कम करो। लक्ष्मी की चिंता ये सब कर रहे हैं, इनमें से न देवताओं को मिली, न असुर को मिली, न मानव को मिली। लक्ष्मी अब इसके बाद समुद्र साड़ी दे देगा, वरुण देवता कमल की माला दे देगा, फिर लक्ष्मी वो माला उठा के सबके अंदर, अरे तपस्वी तो बड़ा है लेकिन क्रोध नहीं छोड़ा है, ऐसे सबको देखेगी, सुंदर तो बहुत है लेकिन बड़ा कामी है, ऐसे करके सब देवताओं को असुरों को छोड़ के मुकंद के गले में माला पहना दी। ये आगे आएगा 10-12-15 श्लोकों में लक्ष्मी का वर्णन। तो लक्ष्मी मुकंद को वर्ण करती है, तो हम मुकंद का शरण ले ले तो लक्ष्मी अपने आप मिल जाएगी, नहीं तो हम में दोष तो उनसे ज्यादा है जो वहां देवता थे। इसलिए कभी भी लक्ष्मी नहीं आएगी, सिर्फ भगवान का शरण लेंगे तो आएगी। हरे कृष्णा।